ISO का पैगाम है जो तलबगार है इल्म के आए सब इसे के परचम तले साथ मिलकर चले सब जवान
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلوات بيتي محمد وعلى محمد.
اللهم صل على
أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه صدق الله العلي العظيم تعالي في صلوات بيجي محمد وعلى محمد میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ 40 سال کے بعد اس روحانی اور علمی محفل میں شریک ہو رہا ہوں البتہ 40 سال پہلے میں آپ کی طرح ایک طالب علم تھا جو کراچی کی طرف سے شرکت کے لیے آیا تھا اور الحمدللہ وہ جو سفر کے سفر کا آغاز ہوا تھا تعلیم و تربیت کے عنوان سے وہ الحمدللہ وہ کاروان آگے بڑھ رہا ہے اور یقیناً 40 سال پہلے جب انقلاب اسلامی کے پہلے قدم کا آغاز تھا اس وقت سے لے کے اب تک جبکہ انقلاب اسلامی ایران اور جو عالمی انقلاب کا دوسرا قدم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے اس میں یقیناً بہت زیادہ پیش رفت حاصل ہوئی ہے رہبر معظم انقلاب ولی امر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ امام خامنہ ای متصل العالم صلوات بھیجے محمد علی محمد پر جو کچھ عرصہ پہلے انقلاب کے دوسرے قدم کے حوالے سے تحریر فرمایا اس میں جو فرد سازی خود سازی معاشرے کی تشکیل تمدن سازی کے حوالے سے لکھا اور جو سفارشات توصیات فرمائے کہ اس دوسرے قدم کو اس دوسرے کام کو کیسے اٹھایا جائے اس میں سب سے پہلی چیز علم و دانش سائنس و ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے اور آخری بات اس میں سب کے زندگی اور زندگی کے انداز کو بدلنے کی بات ہے یقیناً انسان اگر معاشرے کی تشکیل چاہتا ہے ایک عظیم تمدن کو برپا کرنا چاہتا ہے تو اس کا پہلا قدم خود سازی سے شروع ہوتا ہے جس میں یقیناً اس علمی اور معنوی اور روحانی ماحول میں آپ 100 سال کی سفر کو ایک رات میں طے کر سکتے ہیں یہ وہ شہداء کا پیغام ہے جو ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ عظیم شہداء جنہوں نے انقلاب اسلامی کے اس تنومند شجر کو، اس درخت کو اپنے خون سے آپ یاری جس کی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دور میں، عصر حاضر میں، اس میں ہمارے برادر عزیز مولانا ستیہ ندوی صاحب نے عصر حاضر کی جو عنوان سے گفتگو کی، بہت ہی پرمغز گفتگو تھی، اس میں انہوں نے جو سلبی اور منفی پہلو تھے عصر حاضر کے، ان کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا. دوسری طرف جو اس کی ایجابی پہلو ہیں، جو اس کے مثبت پہلو ہیں، وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونے چاہیے. یقیناً دشمن کی یلغار ہے ہر اعتبار سے، ہر میدان میں، خاص طور پہ ثقافتی یلغار، اور آج اپنے عروج پہ ہے. لیکن مرد میدان وہ ہوتا ہے جو دشمن کے حملوں کو، اس کی تحدیدات کو، اس کے خطرات کو اپنے لیے اپرچونٹیز میں اور فرصتوں میں اور مواقع میں تبدیل کرے. آج ہم اس گلوبل ویلیج میں جو عالمی دہکدہ ہے، اس میں عصر ظہور کی طرف ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں. اس پیش رفت کے ذریعے جو حاصل ہو رہی ہے اس دنیا میں، جو عالمی سطح پر ایک دوسرے کے بارے میں معلومات تیزی سے بڑھ رہی ہیں اور بڑھائی جا رہی ہیں، اس میں ہمیں اپنے پیغام کو بھی بہترین انداز سے آگے بڑھانا ہے. قلم، جس کا ذکر ہوا، بہترین وسیلہ ہے، کیونکہ یہی وہ قلم ہے جو قرآن کی نوران بیان میں قلم خلقت سے بھی اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے کہ جس قلم سے خداوند متعال نے کائنات کی تخلیق فرمائی، اور یہ جو تخلیقی صفت اپنے انسان میں، اس کی فطرت میں، اور اس کی فطرت میں جسے بدیت کیا، یہ وہی قلم تخلیقی ہے جو ہر انسان کے پاس ہے، جس کے بل بوتے پر انسان جو ہے کمال کے صفت کو طے کر سکتا ہے. قلم تکوین جسے کہا جاتا ہے، اور قلم تشریع وہ قلم ہے جس سے وہ قوانین اور وہ اصول لکھے جاتے ہیں جن کے اوپر کامزن ہو کے انسان اس تخلیقی عمل کو آگے بڑھا سکتا ہے. رہبر مؤثر انقلاب کا ایک بہت ہی خوبصورت بیان ہے کہ انسان کی مثال اور ہدایت کا جو راستہ ہے، اس کی مثال یہ ہے کہ انسان ایک بہت بڑے بحری جہاز پہ سوار ہو اور اس پہ اپنے مقصد کی طرف سفر کر رہا ہو، اور اسے راستہ نہ مل رہا ہو ساحل سمندر تک پہنچنے کے لیے، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. جو مثال ہے کشتی کی، اقیانوس کی، سمندر کی، وہ عالم خلقت ہے. اور وہ جس راستے سے انسان جو ہے اس کشتی کی یا اس بحری جہاز کی ہدایت کرتا ہے، وہ قلم تشریع ہے جس کے مطابق اسے چل کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے. یہ ارتقائی عمل کیسے ممکن ہے؟ ہم اس ارتقائی عمل کو کیسے آگے بڑھائیں؟ अब आपकी जो गुफ्तगू का इनवान है यहाँ पे इस महफिल रूहानी का जो इनवान दिया गया है उसमें तालीम का जिक्र आया है, असर आसर का जिक्र आया है, कलम का जिक्र आया है। मैं इस इनवान को जो तालीम का है उस पर गुफ्तगू करूँगा, उसके साथ जो तरबियती मफहूम है, तरबियत का जो माना मफहूम है उसके ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा अपने नाटे अंदाज में। शुरुआत में जी मोहम्मद वाले मोहम्मद में आज हमारा चैलेंज क्या है, हमें क्या करना है? आप उस जवानी के दौर से गुजर रहे हैं जहां पे आपको अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करना है। एक तसव्वुर जो पेश किया जाता है वो ये है कि भाई हमें तालीम हासिल करनी है, तालीम हासिल करनी है अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी माती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, और हमें तरबियत हासिल करनी है मानवियत के लिए, अखलाकियात के लिए, और आखिरत के लिए। ये तसव्वुर क्या सही है? ये तसव्वुर क्या जो इस्लामी उसूल हमारे सामने हैं, जो तसव्वुर कायनात इस्लाम की नज़र में है, जो हमें अपने अंदर उजागर करना है, क्या उसके मुताबिक ये तफरीक, ये दोयत, ये दो कश्तियों में सवार होना क्या सही तसव्वुर है? आज इस मसले का हल हमें करना है। पहली बात, कुरान करीम की वो आयत शरीफा जिसको मैंने शुरू में तिलावत की, जिसकी और आपकी खिदमत में पेश की, उसमें कहा जा रहा है इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिब, खुदा की तरफ जो चीज़ ऊपर जाती है इंसान को, जो खुदा के हुजूर में पहुंचाती है वो है कलमे तय्यिब, वो है वो मारिफत, वो है ईमान, जो खुदावंद मुताल को मतलूब है इखलास, वो अंदरूनी कैफियात जो इंसान की रूह में और नफ्स में पाई जाती है। लेकिन उसे क्या चीज ऊपर देखी जाती है? अगर ईमान हो लेकिन अमल सालेह ना हो तो वो इंसान की कामयाबी और इंसान के इर्तकाई अमल में कामयाब इंसान नहीं है। क्योंकि निजात का रास्ता क्या है? निजात का रास्ता क्या है? फलाह किस में है? वलअस्र इन्नल इंसाना लफी खुसर, हर इंसान खसारे में है सिवाय उस किसके, इल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, सवाए उसके के जो वो लोग जो कि ईमान लाया और जिन्होंने अमल साले अंजाम दिया। तो अब जवाब हम किस चीज का हासिल करना चाह रहे हैं? वो जो दोयत है वो सही है या गलत? वो दोकानगी, ये दोकानगी तालीम और तरबियत की जुदाई, ये मेरी नापिस राय में एक सेक्युलर अप्रोच है, ये सेक्युलर सोच है जिसे हमें, जिसका मुकाबला करना है, जिसे ख़त्म करना है। उसके लिए हमें एक मॉडल पेश करना है जिसमें यूनिफिकेशन हो। ये आज का चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। क्यों? जब हम तालीम की बात करते हैं, इल्म व मारिफत की बात करते हैं, दानिश की बात करते हैं, तो उसमें मुख्तलिफ उलूम हमारे सामने आते हैं। साइंसेस हैं, सोशल साइंसेस हैं, नेचुरल साइंसेस हैं, ह्यूमैनिटीज हैं, आर्ट्स हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आती है और बहुत कुछ चीजें, इनको कैसे इलाही रंग में ढाला जाए, वो कौन सा मॉडल है जिसके जरिए हम इन दोनों में यूनिफिकेशन पैदा कर सकते हैं। तालीम और तरबियत को इकट्ठा करना भी वैसे ही एक चैलेंज है, उस मॉडल की तश्कील कैसे होगी, ये आज का बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको आप जवानों ने जिसका जवाब हासिल करना है, तब ही हम और आप उसे कायम रखते आगे बढ़ सकते हैं। दीन और सियासत की जुदाई का मसला भी इसी पैराए में हल हो सकता है, तो बुनियादी तौर पर इसको जब इस जवाब को हासिल करने के लिए एक छोटी सी कोशिश और काविश करने की अभी जरूरत है और इम्कान है, और इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, मुसलसल एक जहद की जरूरत है, जिहाद इल्मी की जरूरत है। आज इंकलाब की कामयाबी और पेशरफ और निजाम इस्लामी की तश्कील और तकवीयत का इन्हिसार इस पर है। यकीनन जो अस्करी मैदान में चैलेंजेस हैं वो अपनी जगह बहुत अहम है, लेकिन उनको भी अगर हमने उन चैलेंजेस का भी जवाब देना है, मुकाबला करना है, उन चैलेंजेस को बीट करना है, तो इल्म और दानिश की के मैदान में पेशरफ जरूरी है, और वहां पे यूनिफिकेशन का मॉडल देने की जरूरत है। तो जवाब कैसे दिया जा सकता है, एक मॉडल छोटा सा मैं आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूंगा अपनी नापिस राय के मुताबिक, इसे आगे एक्सपैंड करने की जरूरत है। इसके अंदर इस पर काम करने की जरूरत है। देखिए, एक मैं अभी हाल ही में किसी दोस्त ने एक छोटा सा क्लिप भेजा किसी फारसी के उस्ताद की तरफ से कि मेरा बेटा मुझे लिखता है अमेरिका से, उसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में जो है दाखिला मिल गया है अमेरिका में, ईरान में, वो ईरान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी से कामयाब होकर उसे अमेरिका में जो है बेहतरीन वहाँ की यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने का मौका मिल गया है, और वो मुझे लिखता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ और यहाँ नहीं पढ़ना चाहता। क्यों? वो कहते हैं कि मैंने गौर किया कि जो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़के या लड़कियां पढ़ रही हैं, वो दुनिया भर से आए हुए हैं, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, खुद ईरान से और दूसरे ममालिक से, और वो वहां की बेहतरीन जो क्रीम है वो है यकीनन जिनको स्कॉलरशिप मिला है और इतनी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में आके पढ़ रहे हैं, जैसे हार्वर्ड आप समझे। मैंने फिर सोचा कि ये खुद जो अमरीकी बच्चे हैं, गोरे हैं, यहूदी हैं, जूस हैं, क्रिश्चियन से, ये कहां है? ये तो नहीं हो सकता कि इनमें कोई पढ़ा लिखा ना हो। तो मैंने जब तहकीक की तो मुझे मालूम हुआ कि जो उनके बेहतरीन बच्चे हैं, जो क्रीम ऑफ द लॉट है, वो जा रहे हैं सोशल साइंसेस में, वो जा रहे हैं मैनेजमेंट में, क्यों? क्योंकि वो उन उलूम और फनून के जरिए दुनिया पे हुकूमत कर रही हैं और हम जैसों को इस्तेमाल कर रही हैं, हम उनके लिए ह्यूमन फॉडर है, हम उनके लिए कारकुन है। तो इससे क्या बात चाहिए? उस बच्चे ने कहा कि मैं पलट के अपनी ईरान की यूनिवर्सिटीज में मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूं, सोशल साइंसेस पढ़ना चाहता हूं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि सोशल साइंसेस जो है हमारे मुल्क में, हमारे जैसे ममालिक में, इसी दुनिया के ममालिक में, मुसलमान ममालिक में उनका तीसरा चौथा दर्जा है, फिर उसके बाद नंबर आता है मौलवियत का, इल्मे दीन का। ये है हमारा मसला। जबकि रहबर मुअज्जम ने उसी एक बयान में फरमाया कि इल्मे दीन वो है जिसे लीड करना है, सोशल साइंसेस पे रास्ते का तायुन करना है, सोशल साइंसेस में साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते का तायुन करना है। तो ये जो हिदायत का काम है दीन की तरफ से, इसको हमें समझना होगा। इसमें जो बुनियादी नुकता है वो समझने की बात है, क्योंकि पैगाम दिया गया है कि वक्त खत्म हो गया है, आप भी थक गए हैं, आपके चेहरों से नजर आ रहा है कि बातें खुश्क हैं हमारी, लिहाजा जिनको मजा नहीं आ रहा वो सलवात भेजे। शुक्रिया। तो बहरहाल अमल सालेह सिर्फ वो अमल नहीं है जो कि इबादी अमल है, अमल सालेह वो अमल है जो ईमान की बुनियाद पर। और देखिए यहाँ पे इल्म का जिक्र नहीं हुआ, ईमान और अमल सालेह में इल्म का कहीं जिक्र नहीं हुआ, हुआ है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इल्म का है। निजात में इल्म का क्या किरदार है? निजात में इल्म का किरदार जो है वो बुनियादी किरदार है, फलाह में, कमाल इंसानी में इल्म के बगैर ना ईमान मुमकिन है, ना इल्म के बगैर अमल सारे मुमकिन है। जरूरी जरूरत है, बगैर इल्म के मुमकिन नहीं है कि इंसान ईमान और अमल सारे अंजाम दे। लेकिन कौन सा इल्म, इसको समझने की जरूरत है। और साथ साथ उसके नतीजे में, हर इल्म के नतीजे में अमल सालेह जब तक नहीं होगा, और वो भी एक रास्ते में नहीं, एक रिश्ते के सिलसिले में नहीं, खुदा के साथ रिश्ता जो एक इबादी रिश्ता है, बंदगी का एक खास रिश्ता है, वो नहीं, उस सिर्फ उसके लिए नहीं, हर रिश्ते में इंसान का अपने साथ रिश्ता है, इंसान का दूसरे इंसानों के साथ रिश्ता है, इंसान का जमीन व आसमान के साथ रिश्ता है, कायनात की तस्खीर इंसान के हाथ में है, और सख्त माफ सामावा जमीन में। तो इल्म और अमल बगैर तालीम और तरबियत के इम्कान पजीर नहीं, क्योंकि अमल जो है वो सिर्फ इल्म से हासिल नहीं होता। आप एक छोटा सा अमल अंजाम देते हैं, उसमें जानना भी है। ये बच्चा भी जो है टीवी लगा रहा है यहाँ पे, टीवी स्क्रीन को, ये सिर्फ जानने की बुनियाद पे नहीं है, इसमें चाहत भी है, ख्वाहिश भी है, क्योंकि उधर से ऑर्डर मिला है, और फिर वो स्किल्स भी हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं, जिनको जिनकी बुनियाद पर ये चीजें जान पा रही है। छोटा सा अमल है, उसमें इल्म भी है, जानना भी है, चाहना भी है, और प्रैक्टिकल स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, एटीट्यूड भी है, स्किल्स भी है। ये तालीम और तरबियत का अमल साथ हो सकता है, सिर्फ नमाज और रोजे में नहीं, नमाज में भी जो है नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड है, चाहना है, जानना है, चाहना है, कर सकना है। तीनों चीजें जब साथ होंगी, तालीम और तरबियत का मफहूम एक होगा, तब हम जो है कामयाबी तक पहुंचेंगे। ये सिर्फ बुनियादी कुछ खतफाल हैं उस यूनिफिकेशन की तरफ, जो इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा उसको تفصیل سے پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلوات بھیجیے محمد وآلہ.